Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
कल जब क्लास हुई थी और आप में से जो बहने उस क्लास में उपस्थित थी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो समर्पण मयता है वो तो हमारे पुरुषार्थ का एक अत्यावश्यक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पुरुषार्थ है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से शिव बाबा के समर्पित नहीं होते तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा नहीं होता, हमारा पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और ट्रांसफर भी नहीं होता। ट्रांसफर का भाव यह है कि जो यहां से ट्रांसफर होके सतयुग में हमें मिले, विनाश होने पर तो सब चीज हमारी यहीं रह जाएगी। वैसे भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसका क्या चलता है, जो कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जैसा उसने कर्म रूपी बीज बोए होते हैं वो साथ में लेके जाती है, बाकी तो सब रह जाता है। तो ट्रांसफर तो वो सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म ही होता है, स्थूल तो यहां रह जाता है, लेकिन स्थूल में भी जिसने जितना दान किया, पुण्य किया, स्थूल के द्वारा लोगों से सहानुभूति करके जितना जो महान कार्य किया, वो उसका मनोभाव सूक्ष्म रूप में वो भी साथ में जाता है। तो हम अगर तन मन धन अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमें भी उसका कई गुना होकर जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए, इस रिपीट होने वाले ड्रामा में बार 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 मिलता है, प्राप्त होता है। और अगर हम समर्पित ही नहीं करते, अपना तन अपने काम में लगाए रखते हैं, अपना मन भी लौकिक कार्यों में, दुनिया के झंझटों और उलझनों में, संसार के संबंधियों और संबंधों में लगाए रखते हैं, और धन भी अपने खाने पीने और मारमारी बनाने और घूमने घामने फैशन करने में लगाए रखते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? जबकि एक ओर हम भक्ति मार्ग में ये सुनते हैं कि सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए, और वो भी कोई बासमती चावल, अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं थे, टोटा चावल, टूटे हुए, जो उसको देने में भी शर्म आ रही थी, उस पोटली को अपनी बगल में छिपाए चले जा रहा था कि ये कोई चावल है, किसको देने जा रहा हूं और चीज कैसी दे रहा हूं। लेकिन वो मुट्ठी भर चावल देने से भी उसको क्या प्राप्ति हुई, ये एक मिसाल कहने में आती है। उसने उतना ही समर्पित किया था और उस समर्पित होने से भी उसको कितना मिला, और अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहां तो सब रह जाने वाला है, छूट जाने वाला है। और अगर हम ये सोचें कि अभी नहीं, एक साल के बाद, दो साल के बाद या पांच साल के बाद, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अभी फलां कार्य हमारा चल रहा है, फलां प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये सब तो चलता चलेगा, आपको क्या मालूम है कि उसके बाद कोई और प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, उससे भी ज्यादा कोई पेचीदा समस्या आपको घेरा नहीं डालेगी। क्या आपको भविष्य का पूर्ण रूप से दर्शन होता है कि आपके भविष्य में क्या लिखा है? एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस का फॉर्म भर रखा है, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी हैं, केवल उसने प्रीमियम जमा कराना है, उसके साथ इंश्योरेंस के साथ जो पैसा पहली किस्त इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है वो देनी बाकी है, तो फार्म तो उसके पास रह गया, इंस्टॉलमेंट उसने दी नहीं और उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो इंश्योरेंस तो हुआ नहीं। कल तो उसने इंश्योरेंस कराना था कि कल सुबह जाके पहला काम यही करूंगा कि इंश्योरेंस के ऑफिस में प्रीमियम देकर अपना इंश्योरेंस की रसीद कटा लूंगा, और अगर वो करा कर उसके बाद शरीर छोड़ता तो 1,00,000 की इंश्योरेंस कराने जा रहा था, उसके घर वालों को 1,00,000 रुपया मिलता, अब तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बाबा ने एक स्लोगन हमें दिया हुआ है कि डिले इज डेंजरस, डिले इज डेंजरस। अगर देर करोगे तो देर से नुकसान होने वाला है। इस संगम युग का एक एक क्षण बड़ा अनमोल है। 63 जन्म के जो हमने विकर्म किए हुए हैं, देह अभिमान पर आधारित कर्म किए हुए हैं, उनको अगर हम इस थोड़े से समय को भी नहीं लगाएंगे समाप्त करने के लिए तो फिर वो रह जाएंगे, फिर हमें पछताना पड़ेगा। बार बार बाबा हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें सावधान करते हैं कि बच्चे नाउ आर नेवर, डिले इज डेंजरस, नाउ आर नेवर, करना है जो भी कर ले, अब ये वक्त जा रहा है, तो ये पोस्टपोन नहीं करो। ये जो पोस्टपोनमेंट की आदत है, कल पर डालने की आदत है, आज नहीं कल, कल फिर कहेंगे कल, कल तो जरूरी करूंगा, तो ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि कल कल करते करते काल आ जाता है और उसका परिणाम क्या निकलता है, हरि बोल जाता है, राम नाम सत हो जाता है और बाकी तो सब यहीं धड़ा रह जाता है। तो इसलिए समर्पण मयता समझ लीजिए, सारा ज्ञान आपने समझ लिया, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु रूप हैं, परम धाम के वासी हैं, ये 5,000 वर्ष का कल्प है, इत्यादि इत्यादि ये सारी बातें आपने समझ ली, लेकिन एक बात नहीं समझी। सारी बातें समझ ली, ज्ञान सारा समझ लिया, कोई भी बात अगर हम पूछें, प्रश्न करें तो तुरंत आपसे उत्तर मिलेगा, लेकिन एक बात नहीं समझी कि डिले इज डेंजरस, नाउ आर नेवर, ये अगर नहीं समझी तो वो ज्ञान आपकी बुद्धि तक ही रहेगा, वो व्यवहार में कर्म में पूर्ण रूप से परिणत नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम बहुत दफा कुछ लिख के ले जाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे निमंत्रण पत्र लिखाओ, सारी दुनिया को निमंत्रण जाना है क्योंकि ये पिता ने यज्ञ रचा है, अगर किसी बच्चे को वो निमंत्रण नहीं मिलेगा तो वो रहना देगा कि हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप इस सृष्टि में आए, आपने यज्ञ रचा, इतना बड़ा उत्सव किया, हमको याद भी नहीं किया, हमको बुलाया भी नहीं, आप सब अनुभवी हैं, अगर माता पिता किसी एक बच्चे को अधिक प्यार देते हैं, कुछ उसको मौका देते हैं, दूसरों को बुलाते भी नहीं, पूछते भी नहीं हैं, तो आपको कैसा लगता है, तो उन बच्चों को कैसा लगेगा, वो तो रो देंगे, भगवान से भी वो सहन नहीं हो सकेगा, सब चीज सहन कर लेता है भगवान, उसमें तो सहनशीलता है, तभी तो कहता है हमें भी के सहनशील बनो, एक चीज उससे भी बर्दाश्त नहीं होती, क्या बर्दाश्त नहीं होती, कि मेरे बच्चों को निमंत्रण ना मिले, बच्चे शांति के लिए पुकार रहे हों, तड़प रहे हों, हमने देखा ब्रह्मा बाबा को भी, साकार रूप को भी, उससे हम समझते हैं कि शिव बाबा को कैसा लगता होगा, हैं? बाबा को नींद कहाँ आती थी, जागृत अवस्था रहती थी, नींद और जागृति की बॉर्डर लाइन पर कभी बाबा होते थे, तो बाबा क्या बात है, बच्चे ये सारे विश्व को संदेश कैसे पहुंचेगा, कि तो जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, बच्चे तो अशांत हैं, पुकार रहे हैं, और उनको ये निमंत्रण कैसे मिलेगा। तुम जाओ निमंत्रण लिखाओ, और ये कुंभ का मेला आ रहा है हरिद्वार में, 60,000 निमंत्रण लिख लाओ, छपा लाओ। तो 60,000 निमंत्रण छपाया, बच्चे वहां तो लाखों लोग आते हैं, 60,000 किसको दोगे किसको नहीं दोगे, बहुत से बच्चे वंचित रहेंगे। जाओ 1,00,000 और छपवा लाओ, और छपवा लाते। तो लेकिन लिख के जब हम बाबा से पास कराने के लिए ले जाते, तो बाबा देखते कि सारा लिखा हुआ है, ये ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन बच्चे ये तो लिखा ही नहीं कि नाउ और नेवर, ये लिखो। क्योंकि मनुष्य की आदत पड़ चुकी है, आलस उसको आ चुका हुआ है, इसलिए जिसको छठा विकार कहते हैं, सुस्ती या आलस, ये 5 विकार भी समाप्त नहीं होते जब तक ये छठा विकार, इसको हम नहीं निपट लेते, ये 5 विकारों पर भी हावी नहीं होने देता हमें। तो इसलिए ये लिखो, नाउ आर नेवर, डिले इज डेंजरस। क्योंकि यहां से लोग जाएंगे वापस, आपने सेवा केंद्रों के पते तो छाप दिए, लेकिन जाते ही तो नहीं चले जाएंगे सेवा केंद्र पर, कहेंगे अभी तो कुंभ के मेले से आए हैं थके हुए, 2-4 दिन में जाएंगे, 2-4 दिन करते करते भूल जाएंगे, निमंत्रण पत्र भी गंवा बैठेंगे, गुम कर बैठेंगे, और फिर कहेंगे भगवान को मंजूर नहीं। भक्ति मार्ग में लोग यही कहते हैं ना, भगवान को अभी मंजूर नहीं, हमारा समय आया नहीं। अरे आपका समय आया है और भगवान को मंजूर है, तभी तो उसने ये निमंत्रण समय पर भेजा है, और साथ में ये भी लिखा है कि नाउ और नेवर, फिर आप कैसे कहते हो भगवान को मंजूर नहीं। उलैना फिर भी भगवान को ही देते हैं, भोलानाथ को, क्योंकि भोला है, सुन लेता है, उसमें सहनशीलता बहुत है, वो कोई तर्क वितर्क दलीलबाजी नहीं करता है कि बच्चे मैंने तो तुम्हें दिया था, चुप कर जाता है। चुप कर जाता है तो लोग उसी के ऊपर ही हावी होने की कोशिश करते हैं, वो तो हमको पता है कि बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। जिन दिनों में यज्ञ में आर्थिक कठिनाइयां थी, भोजन की समस्या बनी रहती थी, उन दिनों में भी कितने पैकेट बनकर लोगों को फ्री लिटरेचर जाता था, और सेवा का कार्य बाबा ने कभी भी रोका नहीं। हर दफा हर मौके पर बाबा ने कोशिश की कि जहां कहीं भी कुछ ऐसा सेवा का चांस हो, वहां सेवा हो। पैसे नहीं है, कैसे हो, लेकिन हमने देखा कि समय पर बाबा की किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी को निमित्त बनाकर मदद मिल जाती थी। तो मैं ये कहता हूं कि वो समर्पण मयता आवश्यक है, और वो समर्पण मयता आप कहते हैं कि हाँ हमने सोच रखा है, काफी हद तक तो हम समर्पित हैं, जो थोड़ा बहुत नहीं है वो हो जाएंगे, कब हो जाएंगे। बाबा ने ये कहा है नाउ आर नेवर, डिले इज डेंजरस। ये नहीं कि यहां से जाने के बाद समर्पित होंगे, अपने मम्मी डैडी से बातचीत करेंगे, जो कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको सोचेंगे, जो नौकरी टोकरी हम करते हैं उस पर विचार करेंगे, और सारी बातें सोचने के बाद सोच समझ कर ही तो काम करेंगे। हाँ आप बहुत समझदार हैं, भगवान से भी ज्यादा समझदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, सोच लीजिए समझ लीजिए। जिसको हमने गाइड माना है, जिसको हमने सर्वश्रेष्ठ परम बुद्धिमान माना है, वो हमको राय दे रहा है, लेकिन हम राय साहब ऐसे हैं कि उस राय साहब की बात के भी बढ़कर अपनी राय हमें ज्यादा पसंद है, भगवान की राय हमें मंजूर नहीं है। हाँ हमारी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, हर एक के अपने प्रॉब्लम हैं, वरना हम ऐसे करते नहीं। हाँ ठीक है, भगवान को आपकी प्रॉब्लम मालूम नहीं है, ये मतलब है आपका कि भगवान को आपकी कठिनाइयां और प्रॉब्लम मालूम नहीं है, वो आपको ज्यादा मालूम है। अरे आपको तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आपको ये भी मालूम नहीं था कि कितने जन्म लिए, आपको ये भी मालूम नहीं था कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, क्या मालूम था। अब आपको मालूम पड़ा है, अब जागे हो तो भगवान से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो, बहानाबाजी बनाते हो, है नहीं? जैसे वो आरती करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और जब सेंटर पर आते हैं तो हम उनको कहते हैं यहाँ पर विषय विकार मिटाए जाते हैं। आप आरती करते थे ना, भक्ति करते थे ना, भगवान को रोज कहते थे ना विषय विकार मिटाओ। अब वो आया है विषय विकार मिटाने। हंस पड़ते हैं लोग, कहते हैं जी अभी नहीं, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम लालच नहीं करेंगे उनकी पालना का इंतजाम कौन करेगा, उनको हमने फलां स्कूल में पढ़ाना है, ये विदेश में भेजना है इत्यादि इत्यादि। थोड़ा लालच नहीं करेंगे तो ये काम कैसे पूरा करेंगे। तो बाहर से जब आरती करते थे मंदिर में तो प्रत्यक्ष रूप से तो यही कहते थे कि विषय विकार मिटाओ, और सूक्ष्म रूप से साथ में ये कहते थे प्रभु जी अभी नहीं, जो सब ना सुन सके अंदर ही अंदर यही कहते थे कि प्रभु जी अभी नहीं, तभी तो ऐसा करते हैं। तो नाउ और नेवर, डिले इज डेंजरस। अपनी सफलता के लिए अगर हमेशा ये ख्याल में रखोगे, कल भी मैं यही कह रहा था कि 6-7 जैसे होता है ना टिप्स टू सक्सेस, सफलता के लिए कुछ इशारे। जब कोई बच्चा इम्तहान देने जाता है तो उससे पहले ऐसी कुछ गाइड बुक्स पढ़ता है जिसमें कोर्स का रिवीजन हो जाए, और रिवीजन के साथ साथ कुछ बातें ऐसी उसमें बताई गई होती हैं जिनको याद रखने से एग्जामिनेशन पेपर जब उसके सामने आए तो उसमें वो ठीक प्रकार से उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, पास विद ऑनर्स हो जाए। तो वो मैं बता रहा था कि कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कि जीवन हमारा सफल बने। दो बातें कल मैंने बताई थी, और तीसरी बात आज ये बता रहा हूं कि हमेशा ये याद रखिए कि डिले इज डेंजरस, नाउ आर नेवर। अच्छा काम जो करना है, जो हमें समझ में आ गया है, बाबा ने जो बात हमें करने के लिए कही है, उसको पोस्टपोन मत कीजिए, टाल मटोल मत कीजिए, उसमें वक्त मत डालिए, क्योंकि जीवन की घड़ियां मनुष्य को मालूम नहीं होती, समय बीतता चला जा रहा है, और ये संगम का समय, इसका हर एक क्षण, हर एक प्राण, यहाँ तक के जो पलक झपकने का समय है, क्योंकि पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी तो काल की गणना जो होती थी वो कई विधियों से होती थी। रेत की घड़ियां तो बाद में बनी, लेकिन उससे पहले जो भारत के कुछ ज्योतिष शास्त्र हैं जिनमें समय की गणना का वर्णन किया गया है, उसके जैसे आज सेकंड या फिर उसके बाद मिनट या आवर या इस तरह की बात हम करते हैं, तो उसमें भी यूनिट्स बनाए गए हैं, इकाइयां बनाई गई हैं समय की, और उसमें से समय की एक इकाई है आंख का झपकना। आंख के झपकने में जितना टाइम लगता है उसको यूनिट माना गया है, तो वो उतना भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये हमारी कमाई का टाइम है, इसका हमें पूरे रूप से ख्याल रखना चाहिए।